यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक
16 अगस्त
1992 को प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री राम द्वारा मथाने में हुआ। राम
पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। संत महात्माओं ने, आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने, भगवान ने ये जो भारतीय संस्कृति है इसके नियम बनाए हैं, उनके अनुसार चले हैं तो लोक और परलोक दोनों सिद्ध होते हैं। इसमें भी जैसे कर्मयोग है, योगास्त्रयोग में प्रवक्ता भागवत महाराज है, तो तीन योग बताए, कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान योग, तीन बताए। निर्णाम से आए मनुष्यों का कल्याण करने के लिए, जिसमें कर्मयोग है इसको बहुत श्रेष्ठ बताया है। इस कर्मयोग की बात भगवान ने कही कि सकाले नयमाता योगो नष्ट परंतु ये योग लुप्त प्राय हो गया, कर्मयोग को जानने वाले बहुत कम रहे। पहले भी ऐसी बात हुई थी, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अध्ययम, पहले सूर्य भगवान को उपदेश दिया, उसने मनु को अपने पुत्र को, मनु ने इक्ष्वाकु दिया, इक्ष्वाकु को दिया, एवं परंपरा प्राप्त, परंपरा से ये प्राप्त हो रहा था, वो समय पाकर के वो लुप्त प्राय हो गया, मनु उसे जानने वाले बहुत कम रहेंगे, ऐसे कृष्ण भगवान ने खुद ने इस बात को कहा। सर्वराय माया तेज्य योग प्रोक्त पुरातन, ये पुरातन योग वही आज मैंने तेरे को कहा है। तो कर्म योग का तात्पर्य क्या हुआ कि शास्त्र की विधि के अनुसार जो कर्म किए जाए वो शास्त्र की विधि किया जाए, निषिद्ध कर्म नहीं, निषिद्ध कर्म त्याग करके विहित कर्म किए जाए, और वे विहित कर्म किए जाए निष्काम भाव से, कामना न रखे। कामना के से किए जाते हैं कर्म, वो फल दे करके नष्ट हो जाते हैं, कामना नहीं हो तो वो अक्षय फल देने वाले हो जाते हैं। कर्मों की बहुत विलक्षण बात बताई, और इनकी गहना कर्मणों गति, कवि प्यत्र मोहिता, बड़े बड़े कवि भी इसमें मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े कवि जिनको भगवान कवि क्रांतदर्शी कहते हैं, विशेष देखने वाले जानने वाले, वे भी इसमें मोहित हो जाते हैं। तो कर्म है वे साधारण रीति से, और सतोगुण में लीन होने वाले, सतोगुण में बढ़ने वाले उत्तम लोगों को जाते हैं, तुमोगुण में जन समसी प्रलयंगत्व कर्म समसी प्रलयंगत्व रजसी प्रलयंगत्व कर्म संग तथा प्रलय से मूढ़ी होली में जाते हैं, और धनकों में जाते हैं। उस मंगल से तीसरा दृष्टा मध्य तृष्ण थी राजसा जगन वृत्तिषा अधोगतिषा तीन गतियां ऊर्ध गति मध्य गति अधो गति। तो मध्य गति है रजोगुण की मध्य गति वो मनुष्य होते हैं, तमोगुण की गति अधो गति होती है, सतोगुण की ऊर्ध गति होती है। ये तीन गतियां तीन गतियों में तीनों गुणों का ऐसा विभाग नहीं है, ऐसा ऐसा विभाग जी बरूबर है, ऐसा नहीं ऐसा विभाग है। ये सत्वगुण है तो ये रजोगुण है, ये तमोगुण है। रजोगुण और तमोगुण पास पास में से सत्वगुण से अलग रहता है। जैसे एक और दस और सौ संख्या होती है तो एक से तो दस गुणा दस हुआ, दस से दस गुणा सौ हुआ, तो ऐसे तो बराबर हुए दस दस गुणा हुए, परंतु एक से दस तक का विभाग नजीक है, दस से सौ गुना विभाग वो बहुत दूर पड़ता है। इस तरह से तीनों गुण है। तो तीनों गुणों मरने में रजोगुण में मरने वाला कर्म संगी से जाए थे, ये कर्म संगी है मनुष्य जो भी। इनमें कर्म की बात बताइए और कर्मों का फल ही सब जगह भोगा जाता है। मनुष्य जन्म के किए हुए कर्म स्वर्ग में मृत्युलोक में पाताल में नरकों में चौरासी लाख जोड़ी में सब जगह कर्म भोगे जाते हैं। मनुष्य जन्म किए हुए कर्म इधर सही हम कौन से क्षेत्र, ये खेत है, खेत में पैदा होती है तो पैदा होती है इसमें मनुष्य शरीर में बहुत पैदा होती है। इस एक जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगते भोगते चौरासी लाख जूनी बीत जाती है और चारों दुख बीत जाते हैं। लक्ष सारी सी लक्ष चौरासी भूत से बीत जाते दुख चार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं। इतना भोगने पर भी कर्म फिर बाकी रहते हैं, कर्मों का फल बाकी रहता है। फिर ऐसे उपजाऊ भूमि है और इसमें कल्याण से तो उद्धार हो जाता है, नहीं तो फिर कर्मों से छूटने की और कोई जगह नहीं है, जगह यही है। पशु पक्षियों की भी मुक्ति हुई है और देवताओं की भी मुक्ति हुई है, तो नीचे दोनों में जाने वालों को भी मुक्ति हुई है और गीता में ये भी शु पाप होने उनका भी कल्याण होता है। और स्वर्ग में रहने वाले उन्हें देवताओं के भी ज्ञान हुआ है, उनकी मुक्ति हुई है, अश्विनी कुमारों ने ज्ञान मांगा है तो दध्यंग ऋषि से, तो वो उसको भी ज्ञान हुआ है तो ज्ञान उनसे मुक्ति हो जाती है। ये अपवाद है, खास मुक्ति का क्षेत्र मनुष्य शरीर ही है, दूसरे शरीर खास मुक्ति के नहीं है, एक अपवाद रूप से उनका भी कल्याण हो सकता है। तो कर्म संग ये है तो कर्म योग हो जाए, मन परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, उसको कर्म योग कहते हैं। उस कर्म योग के विषय में बहुत से वाद विवाद है, पर भगवद गीता कर्म योग को साक्षात परमात्मा की प्राप्ति का कारण मानती है। दर्शनकारों ने कर्म को मलदोष दूर करने वाला माना है, उपासना को विक्षेप दोष दूर करने वाला माना है, ज्ञान को आवरण दोष दूर करने वाला माना है, और आवरण दोष दूर होने से मुक्ति होती है, ऐसा दार्शनिकों का कहो का मत है। परंतु भगवद गीता वो सबकी मुक्ति बताती, कर्म योग से भी मुक्ति, ज्ञान योग से भी, भक्ति योग से भी मुक्ति। दोनों में अगर विचार किया जाए तो जो पद्धति है कर्म सापेक्ष पद्धति है वो ज्ञान की मुख्यता है, और ज्ञान में भी श्रवण मनन निर्ध्यासन आदि है, ये कर्म सापेक्ष पद्धति है। कर्म सापेक्ष पद्धति में योग भ्रष्ट होने की संभावना है, अर्जुन कर्ण सापेक्ष नहीं है, कर्ण निपेक्ष पद्धति है, उसमें योग भ्रष्ट नहीं होता, उसी प्राप्ति परमात्मा की होती है, ऐसी विलक्षणता है। तो कर्मियों की एक बहुत विचित्र बात है कि इनसे मुक्ति होती है। एकादश स्कंध के 20वें अध्याय में इन तीनों का वर्णन आता है, कर्मयोग का, भक्ति योग का, ज्ञान योग का। बड़ा विचित्र वर्णन है, बहुत सुंदर। तो उसमें कर्मयोग के, भक्ति योग के, ज्ञान योग के अधिकारी बताए हैं। अत्यंत वैराग्य जिसको संसार के भोग बिल्कुल नहीं चाहिए, स्वर्गाधिक भोगों की, ब्रह्मलोक के भोगों की भी इच्छा नहीं है, ब्रह्मलोक भोगी चाहे सबल को त्याग, तो ऐसे त्याग चाहता है वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहे वैराग्य, ऐसा वैराग्य जिनको हो गया है वे वैराग्य वाले ज्ञान के अधिकारी होते हैं, और जो वैराग्य तेजी का नहीं है वो ज्ञान योग के अधिकारी नहीं होते। ऐसे ज्ञान योग निर्मिणा नाम ऐसा उसमें एकादश स्कंध में लिखा है। अत्यंत वैराग्य होने से ज्ञान का अधिकारी है, और अभी किसी का वैराग्य होता है ना, अतिशक्त होता है निर्मिणा, न तो अत्यंत वैराग्य है न तो आसक्ति है, परमात्मा में चाहते हैं संसार में ही लुट जाते हैं, ऐसे उन लोगों के लिए भक्ति योग सिद्ध रहने वाला है। और कर्म योग कामना संसार की कामना वाले हैं उनके लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो विशेष करके कामना वाले ही पुरुष संसार में मिलते हैं। तो कर्मयोग कामना ऐसा बताया है, कामियों के लिए कर्मयोग है। तो वो कर्म अपना करने से योग नाम परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाता है। योग का अर्थ समाधि भी होता है और संबंध भी होता है। तो संबंध है वो अर्थ, गीता का जो योग है वो योग संबंध विशेष का नाम योग है। ऐसे गीता में तीनों आता है, संबंध का नाम भी योग है, युद्ध समाधि से उसका नाम योग है, और युद्ध संयम है। युद्ध धातु तीन है, युद्ध योग है एक धातु है, एक युद्ध समाधव है, एक युद्ध संयम है। तो तीनों से ही घर प्रतियोग से योग बनता है। तो योग शब्द के अर्थ, योग के भीतर समाधि भी है, योग के भीतर संबंध भी है, योग के भीतर सामर्थ्य भी है, ऐसा योग शब्द भगवान ने लिया है। योग शब्द का गीता में बहुत प्रयोग हुआ है। ऐसे देखा जाए तो हरेक जो पुस्तिका होती है जब अध्याय पूरा होता है, इसी श्रीमद् भगवद् गीता सूपनिषद सूक्ष्म विद्यायाम योग शास्त्र अग्नि प्रसाद योगो नाम प्रथमोध्याय, तो योग दो बार शब्द आ गया पुस्तिका में। अंत में अध्याय के तो 18 अध्याय में 36 बार तो योग इसमें ही आ गया, और उस बीच में भी बहुत योग का वर्णन है। कहाँ योग है, वो किसका वाचक है, इसका विवेचन अपने गीता दर्पण में किया है। गीता दर्पण है, उसमें गीता दिखने लगे, उसमें योग का शब्द कहाँ कहाँ, किस योग का कैसा अर्थ किया गया, कुछ बताया। तो कर्म योग है, कर्म करते हुए संसार से संबंध छोड़ जाए तो परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाता है, उससे मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है, वो कर्म योग कहलाता है। कर्म योग साधारण काम सब करते हैं, ये दुकानदारी है, ये खेती है, ये संसार का काम है, रसोई आदि बनाना है, नौकरी करना है, इन सब के करते हुए कर्मयोग कर सकते हैं। कर्मयोग में सब समा जाते, जितनी क्रिया संसार की जाती है उसमें काम्य और निषिद्ध का त्याग है। निष्काम कर्मानुष्ठान त्यागात काम्य निषिद्ध हो तथापि परमो धर्म जपस्त्यादि गुणारे। श्री मधुसूदनाचार्य ने गूढ़ास दीपिका टीका लिखी है संस्कृत में, उन्होंने ये बात कही है कि निष्काम कर्मानुष्ठान, निष्काम भाव से कर्मों का अनुष्ठान किया जाए। त्याग काम में निषिद्ध हो, काम में कर्म और निषिद्ध कर्म का त्याग किया जाए। शास्त्र में विहित और निषिद्ध दो बात ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। और नहीं करना चाहिए वे कर्म निषिद्ध कह जाते हैं, ऐसा करना चाहिए वे कर्म विहित कर कहे जाते हैं। उन कर्मों में विहित कर्मों में संसार के हित के लिए जब वो कर्म होते हैं वो कर्म योग होता है, और वही कर्म भगवान के लिए किए जाए तो वो भक्ति योग हो जाता है। ऐसे भक्ति योग के भी कई भेद हैं, परंतु वो भगवान का उद्देश्य रखकर किया जाए वो भक्ति योग हो जाता है। मुख्य भेद है कि क्रिया तो सांसारिक है, परंतु करे भगवान के लिए तो उससे मुक्ति हो जाती है। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोष निदासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषम् अर्पणम्। यत करोषि, जो कुछ करता है तो अर्पण भगवान ने किया जाए तो शुद्ध किया जाए, अशुद्ध नहीं। जो कुछ में पाप कर्म नहीं आते, जो कुछ किया जाए। यत करोषि, बहुत बड़ा पेट है इसका, खाना पीना उठना बैठना सोना जगना काम आदि करना, खेती व्यापार नौकरी आदि करना, सब कर्म आ जाते हैं। तो यद करो यदश्नासी, यदश्नासी से शरीर निर्वाह के लिए खाना है पीना है कपड़ा पहनना है शौच स्नान आदि करना है शुद्धि करना है, ये सब यदश्नासी के अंतर्गत शरीर के निर्वाह के लिए किए जाए वो कर्म सब के सब विहित कर्म, निषिद्ध नहीं किया जाए शरीर निर्वाह के लिए। शरीर के निर्वाह के लिए किए जाए कर्म, उनमें कर्मों में निषिद्ध भी आ जाते हैं। निषिद्ध करने का उद्देश्य नहीं है, परंतु सर्वारंभवाई दोष है न धूमे नागरिवाता, आरंभ मात्र में दोष आ जाता है। कुछ न कुछ व्यापार करो तो व्यापार में भी जीव हिंसा हो जाती है, खेती में करो तो खेती में बहुत जीव हिंसा हो जाती है। आजकल तो चैत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में हिंसा होती है, घास और पाला भी खत्म हो जाता है खेतों में, ट्रैक्टर से करते हैं गायों के खाने के लिए घास और पाले की भी जड़ उखाड़ फेंक देते हैं, तो इनसे बहुत ज्यादा नुकसान है, बड़ी भारी हिंसा है, हत्या है। और ऊंटों से और बैलों से की जाए खेती, उसमें उतनी हिंसा नहीं है जितना ट्रैक्टर में हिंसा है, हत्या बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो ऐसे कौमों में हिंसा होती है, परंतु वो निगादा करके ख्याल से किया जाए कर्म तो वे कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति के कारण हो जाते हैं। क्यों कहते हैं शारीरिक केवल कर्म कुर्बन्नाप्नोतिकिल्बिषम्, केवल शरीर के निर्वाह के लिए काम किए जाए वो पाप का भागी नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि इसमें कर्म होते तो है, वो पाप लगता नहीं। शरीर के लिए कर्म खाना पीना आदि किया जाए केवल निर्वाह मात्र का, तो उसमें उसको पाप नहीं लगता। तो पाप नहीं लगता, इसके पेट में एक पाप कर्म होते हैं पर पाप लगता नहीं। ऐसे ही सांस भीत है वो कर्म है, स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोतिकिल्बिषम्, स्वभाव के अनुसार सांस में ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंत्यज इनों के लिए इनके लिए जो किए जाए कर्म, वे कर्म भी पाप के भागी नहीं होते। क्यों क्रिया में सर्वारंभ सब आरंभ होते हैं, कुछ कुछ पाप उसमें हो ही जाता है। तो स्वभाव नियतम, स्वभाव के अनुसार से शास्त्र ने नियत कर दिया है तो वे कर्म किए जाए तो उनमें पाप लगता नहीं। तो लगता नहीं तो कर्म किए जाए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, पाप करता ही नहीं वो, तो लगता नहीं तो शास्त्र भी कर्म करने से दोष आ जाते हैं, उसमें वो दोष लगते नहीं। निगाह रखता है, पाप करता नहीं, जीवों का हत्या करता नहीं, खूब ख्याल से काम करता है, तो जो जबरदस्ती काम में पाप लग जाता वो पाप लगता नहीं। तो स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, और शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, ये माप हो जाते हैं। ये कर्म ऐसे हो सास भी तो सास की आज्ञा के अनुसार किया जाए कि भाई चारों वर्णों का ये कर्म है, ऐसी ब्रह्मचारियों का, गृहस्थों का, वानप्रस्थों का, सन्यासियों का कर्म है, वे कर्म करते तो उनमें भी दोष हो जाते हैं। उनमें भी दोष किए जाए तो गृहस्थ में ज्यादा होते हैं, ब्रह्मचारी के कम होते हैं, वानप्रस्थ कम हो, सन्यासी कम होते हैं, परंतु गृहस्थ में रहते हुए जो कर्म ज्यादा कर्म काम हो जाते उसमें भविष्य वो नहीं लगता। ऐसे ही ब्राह्मण के कर्म है, उनके ब्राह्मणों के कर्मों में दोष कम आता है और क्षत्रियों के दोष कर्म में कुछ दोष आता है, वैश्य के कर्म में ज्यादा आते हैं, सूर्य कर्मों के दोष आते हैं, परंतु वो स्वभाव नियत कर्म होने से वो कर्म बंधन कारक नहीं होते। इनका अर्थ यह नहीं है कि अंधाधुंध कर्म करो पाप नहीं लगे, ऐसा नहीं। अवश्य भावी जो टालते हुए भी नहीं टाल सकते, जैसे चलते हुए निगाह रखते हैं जीव जंतु की, फिर भी कोई भी अनजान पड़ने में जंतु मर जाते हैं, कीड़िया मर जाती है, तो उनके लिए वो माफ किया गया। ऐसा नहीं कि तैसे ही करो पाप लगेगा, नहीं ये नहीं है। ख्याल रखे तो उनको निर्वाह मात्र कर्म करने में पाप बहुत कम लगते हैं। जाप योग दर्शन में अहिंसा सत्य अस्तेह परिग्रह स्वयं अस्तेह ऐसे पांच यम है, पांच नियम है, तो उन्होंने भी बताया है कि इनके कर्म करने से वो नियम है तो यम है, सौ संतोष तपस्वाध्याय इस सारे नियमा और अहिंसा सत्य अस्तेह ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा ये पांच यम है, तो नियमों से यम की श्रेष्ठ बताई है संयम का, तो इसमें यमों की अपेक्षा नियमों की अपेक्षा यम बड़े शुद्ध है, ऐसे कर्म कई शुद्ध है कि कुछ कुछ ऐसा कि इसमें ज्यादा ऐसा ऐसा है। ऐसा होते हुए भी स्वभाव नियत कर्म में पाप लगता नहीं, ऐसी बात बताई है। अब दैनिक कर्म है जिनमें स्वाभाविक कर्म करते हैं उनमें पाप नहीं लगता और वे अवश्य करने चाहिए। तो आज कुछ ऐसी मन में बात आई कि हरेक भाई बहन सावधान होकर काम करे, उसके लिए कुछ बातें बताई जाती है, वो नियम रखे। ऐसी आदि प्रार्थना है आप लोगों से कि वो नियम का पालन करो। जब नींद से उठो तो पहले भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, थोड़ी देर बैठ करके भगवान का चिंतन करो, उसके नाम का जप करो, सबसे पहले ये करना चाहिए। इसके बाद हाथ देखने की बात बताई है, वो भी देखना है। इसके बाद उठ करके पैर रखे तो भूमि को भी नमस्कार करके और फिर पृथ्वी पर पैर रखना चाहिए, सबसे पहले नमस्कार की बात चाहिए। तो नमस्कार पृथ्वी को करना है, माता पिता को नमस्कार करना है, गुरुजनों को नमस्कार करना है, ब्राह्मणों को नमस्कार करना है, गौओं को नमस्कार करना है और सूर्य उदय हो तो सूर्य भगवान को नमस्कार करना है। ये नमस्कार से बहुत लाभ होता है। नमस्कार प्रियो भानु, भगवान सूर्य को नमस्कार बड़ा प्यारा लगता है, जल चढ़ाना बड़ा प्यारा लगता है, तो स्नान कर शुद्ध तांबे कलशे में कुछ लोटे में जल लेकर थोड़ा कुमकुम डाल करके वो तो लाल पुष्प डाल करके और वो जल चढ़ाना चाहिए भगवान शंकर सूर्य भगवान को। उसमें यही सूर्य सहस्रायण सो तेजो राशे जगत फते अनुकंपय माम भक्त्या गृहान आर्घ्यम नमोस्तुते। ऐसा नहीं आवे तो कम से कम श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, ऐसे तीन अंजुली भगवान सूर्य को देनी चाहिए। वो तीन अंजुली देने से त्रिलोकी के जल दान का पुण्य होता है, त्रिलोकी को जल पिलाना हो इतना पुण्य होता है, और न देने से दोष लगता है। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके लिए है सूर्य भगवान जल देना, कि सूर्य भगवान तीन अंजुली देने से हाँ सूर्य भगवान जो वर्षा बरसते है तो निगृणाम विश्रजामि च ग्रहण में करता हूँ, सूर्य सुखा देता है सब, उनके सब के जल को सूर्य खेच लेता है और किरणों में लाकर फिर उनसे वर्षा होती है। सूर्य जी में जल चढ़ता है, समुद्र से भी जल चढ़ता है, नदियों से जल चढ़ता है और हरिद्वार ऋषि के इसमें हमने देखा है गंगा जी से जल चढ़ता है, गंगा जी से भी जल चढ़ता है, ऊंचा दिखता है वो झोर जैसी है वो चढ़ता है, पहाड़ों में से जल चढ़ता मन भी बदल पैदा होते बदल ऐसे सूर्य वहां से पैदा होते हैं, समुद्र से बहुत जल होता है, इस वर्ष के मानसून है ये अमुक जगह वर्षा होगी, अब अमुक जगह मानसून आया है अमुक जगह वर्षा होगी तो समुद्र के कारण से वहां से इतना मील जाने पर वो बदल बनकर वहां बरसेगा, यहां से उठा है जल वहां बरसेगा, ऐसा उनकी गणना की हुई है। तो पहले कह देते हैं अमुक देश में वर्षा होने वाली है ऐसा वो कह देते हैं, उनमें गणना में कुछ फर्क होने से कुछ फर्क हो जाता है, क्यों गणना की चीज है ज्योतिष की, वो ज्योतिष के तत्व को जानने वाले बहुत कम रह गए, हरेक शास्त्रों के सिद्धांतों को जानने वाले कम है, तो वो कम जाने के कारण से कहीं कहीं भूलें हो जाती है, परंतु प्राय वो बात ठीक निकलती है अंदाज में बांधते हैं। तो ऐसे जल को खींचता है पहले सूर्य भगवान, वो फिर जल को बरसाता है, वो सूर्य की किरणों को पुष्ट करने के लिए आहुति दी जाती है, यज्ञ किया जाता है, अग्नि में ये जो है चावल है तिल है छछरीला है सुगंधित द्रव्य है ऐसी चिटकी है खारक है ऐसी वो हव्य होता है, मिला करके हवनी द्रव्य होता है, उसे आहुति दी जाए और गाय का घी होता है उसे मिलाकर दी जाए, तो अग्नि में आहुति दे रहे अग्नोप्रास्ताहुति सम्यक आदित्य उपतिष्ठते, वो दी हुई आदित्य को प्राप्त होती है, आदित्य जायते वृष्टि वृष्टि अन्नम और तथा प्रजा, वो सूर्य को प्राप्त होता है वहा जल बरसता है, तो वो संपूर्ण लोगों को जल देने में सूर्य भगवान कारण है, सूर्य भगवान के किरणों से जल चढ़ता है उसे बरसता है, उस भगवान के हम तीन अंजुली रोजाना दे दें सूर्य भगवान के लिए तो समस्त जितने जल बरसती है उस जल के बीच में हमारा भी भाग हो जाता है, जैसे सोमन चावल बनाए जाए ब्राह्मण भोजन के लिए उसमें शेर दो शेर हम भी डाल दें तो हमारा उसमें हिस्सा हो जाता है, ऐसे हम योजना जल दान करते हैं उसमें हिस्सा हो जाता है, त्रिलोकी को जल पिलाते इतना उसका महात्म्य लिखा है, ऐसे बलिदेश देव होता है उस बलिदेश देश में वे मंत्रों के से अगर आहुति दी जाए जिन्हें उधारियों को उसका अधिकार है दूसरे करें तो बलिदेश वैसे ही किया जाता है, उसमें मंत्र नहीं है, स्त्रियों कर सकती है सूर्य कर सकते हैं, जिनको जनेऊ का अधिकार नहीं वे भी कर सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश ये जनेऊ धारण करें वो जनेऊ धारण करने वालों को उसका अधिकार है, वे करते हैं ओम करते हैं, और महायज्ञ बताया है वो पंच महायज्ञ बलिश्वदेव उसमें पांचों यज्ञ सूक्ष्मता से आ जाते हैं, वो विधि चतुर्चिंतामणि दूसरे भाग में उनका चित्र भी दिया है आहुतियों भी लिखी है उस तरह से करें, और आहुतियों पंत ऐसा पन्ना छपा हुआ भी गीता प्रेस से मिलता है, यहाँ ही मिलता होगा अनुमान से पता नहीं हमने लिखे नहीं की है, वो पन्नों के अनुसार से वो आहुति दी जाए तो वो पांच आहुत पांचों को दे दी जाती है, ऐसे मंत्र है उनके सब मंत्र जब दिया जाए तो वो रोजाना करना चाहिए, तो रोजाना अग्नि में आहुति देनी चाहिए, तो अग्नि में आहुति देने की चाल हमारी पहले से है, आजकल भी जो पहले पुरानी माताएं जो रसोई बनाती थी तो रसोई बनाते हुए भोजन पुरुष ना हो तो बाल को ठहर जा अग्नि जिम्मा में पहले तो उसमें घी और थोड़ा चावल उसने वो ले करके सूरमा का सुबह अग्नि में डालते हैं। वो बड़ी वैष्णुदेव करने की विधि इतनी विधि रह गई है। इन बहन माताओं में जो पुरानी है उनकी बात है, आजकल की छोरियों की बात मैं नहीं कहता हूँ, वो करते नहीं। उनसे प्रार्थना करता हूँ आप सदा ऐसे अग्नि को भोजन कराओ, उसमें नमक वाली चीज न हो। चावल होते हैं तो उसमें नमक नहीं पड़ता है, ऐसे रोटी भी बनाई जाए तो नमक नहीं हो, उसमें घी और चीनी डाल करके उससे विष्णु जमाया जाए, भगवान की वो आहुति दी जाए अग्नि में, तो वो अग्नि में आहुति जाने से रसोई शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। उसमें तो यहाँ तक वर्णन आता है कि भगवान के भी भोग लगाओ तो पहले अग्नि को भोजन करा कर फिर भोग लगाओ, क्योंकि भगवान को भोग पहले लगाना है, पर अग्नि की शुद्धि रसोई की सब रसोई की शुद्धि हो जाती है, सब पहले अग्नि को आहुति देने से ऐसे कराओ। इसमें दोनों तरह की विधि होती है, परिदेश करके भोग लगाना और भोग लगाने के बाद आहुति देना, ये दोनों तरह की विधि आती है। तो ऐसे कर्म करना है तो वो पहले उससे ही भगवान को पृथ्वी को नमस्कार करना, पीछ में घर में जितने बड़े हैं उन बड़ों को प्रणाम करना चरणों में, जिसमें माता का दर्जा शास्त्र में ऊंचा बताया है। हमारी दूसरी माता होती है जैसे कौशल्या है, सुमित्रा है, ये राम जी की माताएं होती है, तो उन माताओं का बहुत ज्यादा अधिकार रखना चाहिए, जन्म देने वाली से भी। ऐसे ही काकी है, बड़ी माँ है, इनको भी माताओं के समान करके इनका भी आदर माँ से अधिक करना चाहिए। घर में जो जो बड़ी है उनका दर्जा ऊंचा है, उनके चरणों में नमस्कार करना। मैं तो भाइयों को लड़कों को कहता हूँ कि माँ का नमस्कार करो तो चरण छूना चाहिए मस्तक से, दोनों चरणों में मस्तक रख करके माँ के चरणों का नमस्कार करना चाहिए। माँ का दर्जा बहुत बड़ा ऊंचा है। हम देखो तो सीता राम राधे श्याम गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण पहले माँ का नाम लेते हैं, पीछे पिता का नाम लेते हैं, इस वास्ते माँ का दर्जा ऊंचा ऐसा बताया गया है। तो माँ को नमस्कार करना, माँ से दूसरी माँ का जो जो पितृमात का रूप बन जाना तो कानन सत अवध समाना, ये कौशल्या ने कहा है। तो वो दर्जा ऊंचा, ऐसे उनको बड़ों को नमस्कार करना, पिता को नमस्कार करना, बड़े बाप को नमस्कार करना, बड़े भाई को नमस्कार करना, बड़ी बहन को नमस्कार करना, ऐसे नमस्कार करे, ऐसे पुत्र नमस्कार करे, ऐसे पुत्री भी। कहीं कहीं पुत्री के लिए संकोच करते हैं, पिता है, बड़े भाई है, काका है, बाबा है, ये संकोच करते हैं कि पुत्री से कैसे तरह सुबह में नमस्कार न करा। तो ये भावना भी बड़ी अच्छी है। कन्या होती है वो कन्या कुमारी ही बड़ी ऊंची मानी गई है, वो धर्म की मूर्ति होती है, भगवती देवी का साक्षात स्वरूप है। इस वास्ते माता पिता भी अपनी बेटी से चरण छुआने में संकोच करते हैं। वो ठीक बात है, कन्याओं का आदर होना ही चाहिए, परंतु कन्या अगर नमस्कार कर चरण छुए तो दोष नहीं है, माँ बाप के चरण छू सकती है। और वे अगर संकोच रखते हो तो दूर से करे, नमस्कार जरूर करे, चरण नहीं छुआ तो मस्तिष्क जमीन पर मस्तक टेक करके नमस्कार करे, पर नमस्कार करना चाहिए। संतों ने भी कहा नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाय मिले पर ब्रह्म में आवागमन बचाए। कितना बड़े से बड़ा लाभ बताया, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, सभी कर्म कट जाते हैं और आवागमन बचाया जाए, जमीन पर मिल जाए। एक ओर कृष्ण श्री कृष्ण प्रणामो दशाओ मेधाओ तुल्य दशास मेधी पुनर्स जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान को नमस्कार करे तो नमस्कार का कितना महत्व है। उन्होंने बताया कि दशाश्व मेधा अष्टमेध यज्ञ किया जाता है, सबसे बड़ा होता है यज्ञ, वो अभ्यास करना है, उसमें अर्ध स्थान होता है, मानो यज्ञ करने के बाद में जो स्नान किया जाओ और स्नान कहलाता है। तो 10 आश्रम अश्वमेध और अवध स्नानों का फल होता है एक नमस्कार करने से। एक ओ भी कृष्ण से तथा प्रणाम हो दशाश्वमेधावृत का फिर होता दशाश्वमेधी पुनरेदी जन्म दशाश्वमेधी को पुनर्जन्म होता है। कृष्ण प्रणाम ही ना भगवान को प्रणाम करने वाला कैसा जन्म नहीं लेता कि इतना बात में हाँ साक्षी ने भी नमस्कार है प्रयुक्त कृपाणे मूल मुताबिक प्रणाम किया जाए तो भी उनके लिए मोक्ष द्वार है उनका कल्याण हो जाता है। नमस्कार वो हृदय से होना चाहिए। नमस्कार उसका नाम है एक तरह की शरणागति है। कोई भी ऐसे किया जैसा मैं तो आपके चरणों में पड़ गया अब मारो चाहे तारो आपकी मर्जी जो दंड दो हमें वो स्वीकार है सबका सब ही ऐसे नमस्कार की विधि है। वो भाव रखकर किया जाए तो उनकी कर्म सब कट जाते हैं पाप मिट जाते हैं बड़ा लाभ होता है। हमारे साधुओं में ये रीति है कि बड़े मंत्रों को नमस्कार करो गुरुओं को नमस्कार करो और बड़े को नमस्कार करो। हमारे यहाँ बड़ा छोटा ये होता है जिसने पहले जन्म लिया है वो बड़ा है पीछे जन्म लिया वो छोटा है। चाहे 5 वर्ष का 10 वर्ष का भी ये बालक उसने उसके भीख ले लिया इसके बाद 5-10 दिनों के बाद एक बूढ़े 60 वर्षों ने जन्म लिया मानो भीख लिया तो 60 वर्षों वाला छोटा कहलाता है पहले जिसने भीख लिया वो बड़ा कहलाता है। तो बड़ों के चरणों में नमस्कार करना दंडवत करना हमारे साधुओं में कहीं कैसी रीति है ही कि बड़ों को दंडवत करते हैं अपने तो आजकल गुरुओं को भी नहीं करते क्या किया जाए जमाना है ऐसा ही ऐसे बहनों माताओं में भी है नमस्कार नहीं करते छोड़ दिया है जैसा साधुओं में अच्छी प्रणाली चलती थी पहले आजकल इस प्रणाली का लोक साफ हो रहा है। तो सुबह नमस्कार करना फिर भोजन करने के बाद नित्य कर्म करके फिर नमस्कार करना भोजन करने के बाद नमस्कार करना शाम को दिया बत्ती हो जाए उसमें नमस्कार करना संध्या का ऐसे नित्य कर्म करके नमस्कार करने की विधि है। इसमें भी जब गुरु महाराज का कोई पत्र आ गया चेले के पास में तो गुरु जी का पत्र आया तो पत्र को जनरत प्रणाम नमस्कार करके फिर गुरु जी को बड़े संतों को नमस्कार करना पत्र पढ़ करके भी हजामत कराई तो हजामत कराने के बाद भी गुरुओं को नमस्कार करना ऐसे हमारे शास्त्र की प्रणाली है हमारे साधुओं की ऐसी प्रणाली रही है करते हैं अब भी कोई करते ही है उनकी एक प्रणाली हमारे पहले से है। तो नमस्कार करने की बहुत विशेष बात है नमस्कार है वो करना बहुत श्रेष्ठ है। नमस्कार कर दिया चरणों में गिर गया तो सब गुना माफ हो जाते हैं सच्चे हृदय से वो कहता है तो उनका कर्म हो जाए आपकी मर्जी चाहे दंड दो चाहे पुरस्कार दो चाहे कुछ भी करो वो कह देता मैं तो आपका हूँ शरण हो गया वो शरणागति है एक तरह से। तो शरणागति मंत्र में मन मना भव मद भक्तो भव मद यादि मांग नमस्कुरु ऐसा भगवान ने कहा तो नमस्कार कर। तो शरणागति की बात बताते हुए ये 4 बातें बताई है मन में मेरे में मनवाला हो जा मद भक्तों में मेरा भक्त हो जा और मेरा पूजन कर और मेरे को नमस्कार कर। इस बात के गीता में इसको सर्वगुह्यतम कहा है 18वें अध्याय में सर्वगुह्यतम कहकर मन मना भव लिखा है 64वें श्लोक में कहा 65वें बताया 66वें सर्वधर्मान त्यज माम एकम शरणम भज कहता। तो ये खास शरणागति की बात है उसको आप बताया सतम कीर्ति अंतो माम यथंत सदृशा नमस्त माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते मेरा नमस्कार करते मेरी उपासना करते हैं तो भगवान को नमस्कार करना ये बड़े श्रेष्ठ है। ऐसे अपने बैठे हुए सब तीर्थों को सब नदियों को संपूर्ण मंदिरों को भगवान को 4 धाम को इनको सबको नमस्कार करना। हमारे संत लोगों में पहले ये जैसी वहां पर भी चार संप्रदाय भवन द्वारा और जितने कोठ भंडारी कोठारी और जिन गुरु भक्त भी और जितने जो गुप्त प्रगत संत महात्मा है उनको सबको ही नमस्कार करना। नमो नमो गुरुदेव नमो कर्ता अविनाशी नमो हरि भक्त नमो दस नाम सन्यासी नमो जैन जोगेश नमो जंगम सौरासी नमो बोध द्रवेश नमो सिद्ध चौरासी नर नार सबको नमो और जय शिव जय शिवरे पीब को जन रागो सबको नमो जो ऐसे जीव मात्र को और पीव को ऐसे रावदास ने धर्मेश्वर लिखी है भक्त महाल उसने नमस्कार लिखा है सबको ही। तो ऐसे नमस्कार करने की रीति हमारे शास्त्रों में गणना आती है संतों की वाणी में आता है जगह जगह ये बात आती है। तो रोजाना नमस्कार करना ही चाहे कुछ भी हो जाए ऐसे जेठानी को नमस्कार करना बड़ी बहन हो तो उसको भी नमस्कार करना वहाँ जेठानी को काकी सासू बड़ी सासू सासू आदि जितनी बड़ी है उनको सबको नमस्कार करना चरण छू करके स्त्रियों को नमस्कार करना। पति के चरण छूने की बात आई है उसके सिवाय साधु हो ब्राह्मण हो उनको भी बहनों को चाहे नमस्कार करे पर छूने की बात का निषेध आया है कि छूए नहीं स्पर्श नहीं करे पति के सिवाय किसी को छूए नहीं। सीता माता रावण के यहाँ पर थी तो हनुमान जी महाराज गए वो मुद्रिका भी दी लंका चढ़ाई सब काम करके और फिर गए माँ मैं अब जाऊँ माँ का हुक्म लेने के लिए गए नमस्कार किया कि माँ मैं जाऊँ तो हनुमान जी महाराज को देख करके और माँ रो पड़ी सीता जी को रोना आ गया कि बेटा मैं रात दिन जल रही थी तुम्हें देख शीतल भई छाती मेरे हृदय में ठंडक आई कि बेटा आया मेरा हनुमान ऐसे ठंडक हुई। अब बेटा तू ही क्या जाऊ तो मेरे सब कोई आधार नहीं है व्याकुल हो गई अब क्या करूं मैं या राक्षसों के बीच में राक्षसियों के बीच में मेरे को रहना पड़ेगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि माँ आप घबराती क्यों आपके अगर ऐसा हो तो मैं यहाँ चढ़ जाओ मैं राम जी के पास पहुंचा दू अभी अब भगवान के पास पहुंचा दू। तो सीता जी ने कहा देखो बेटा मैंने किसी पुरुष का स्पर्श किया नहीं है मेरा स्पर्श रावण ने किया है मैंने रावण का स्पर्श नहीं किया है तो किसी पुरुष का स्पर्श मैंने कभी किया नहीं सपने में भी तेरे को कैसे कर सकती हूँ। अब जरा ध्यान दो लवकुश जैसे सीता जी के बेटा है तो हनुमान बेटा कोई लवकुश से कम नहीं है वही माँ का कभी बोलता है और जैसे माँ आज्ञा देती है ऐसे एक देती है ऐसे लक्ष्मण भी बेटा कहलाता है और वो भाभी को माँ की तरफ मानता है इस वजह से अपने यहाँ पे परिवार में जो भाभी है बड़े भाई की स्त्री है वो माँ के समान होती है। कन्या का दान माता पिता करते हैं पर माता पिता अगर ना रहे तो बड़े भाई और भौजाई वे कन्या दान करते हैं क्यों वे भी माँ बाप के समान है उनको भी कन्या दान करने का अधिकार है छोटी बहन पुत्री के समान होती है और कन्या कन्या और पुत्र उनको भी चाहिए कि बड़े भाई होते हैं भौजाई होते हैं माँ बाप के समान होते हैं तो देवर है वो भी माँ को माँ के समान समझता है। देवरानी रोजिना ही नमस्कार करे सुबह शाम दोनों भगत तो लड़ाई भी हो जाए तो उसको गाली देने में तू मर जा तू कर जा ऐसी बात कही नहीं जाती रोजिना चरणों में पड़े उसको कैसे करनी बात कही जा सकती है तो लड़ाई नहीं होती है और लड़ाई हो जाए तो नमस्कार नहीं होता है लड़ाई होने पर भीतर में एक ईर्ष्या रहती है वो नमस्कार नहीं करने देती। और नियम अपने ले लो बहनों माताओं से विशेष कहना है कि आज से अपना नियम ले लें बड़ों के चरणों में सुबह शाम कम से कम सुबह शाम दो भगत तो प्रणाम करना ही है दियावती होती है तो दियावती को भगवान नमस्कार करके बड़ों के चरणों में नमस्कार करना ऐसा बहनों अगर करती रहे तो घरों में प्रेम बढ़ेगा, आपसे आप स्नेह बढ़ेगा। क्यों दीवानी पगा पड़ती है रोजी ना, तो उन्हें कह सके तू ब्राह्मण सोच नहीं कह सकेगा। आजकल एक बाण खराब पड़ गई है, कुंवारी कन्या को भी रान शब्द कह देते हैं, रान आ रान जा, एक संपुट लगा देती है, खा रान पी रान आ रान जा रान 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 शब्द करती है। और वो कहीं विधवा हो जाए तो फिर रोती, फिर माँ ही होती है कि मेरी बेटी में दुख पड़ गया, तो तुमने पहले ही शगुन कर दिया ऐसा, तो घरों में कुंवारी कन्या को कभी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए, रान डाली ऐसी गाल नहीं जानी चाहिए। कुंवारी कन्या वो तो महाराज आपके धर्म की मूर्ति है, जैसे ब्राह्मणों को देने का पुण्य बताया है ऐसे कन्याओं को भोजन करने वाले देवी शक्ति की उपासना करने वालों के लिए खास बताया है। कन्याकुमारी दक्षिण में आखिरी तीर्थ है समुद्र किनारे, तो वह कन्याकुमारी वो पार्वती जी कुंवारी अवस्था में भगवान शिव की उपासना करती है, वो कुंवारी कन्या है, उस पार्वती का वहाँ मंदिर है, तो वहाँ भी जाती है कन्याकुमारी, तो सब लोग वहाँ जाते हैं, यात्रा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं। और घरों में भी ऐसी बात है कि जो देवी की उपासना करते हैं शक्ति को इष्ट मानते हैं, तो कुंवारी कन्या वो बड़ी शक्ति साक्षात भगवती देवी है। ऐसे समाज कन्याओं को भोजन कराना, कन्याओं को वेश देना, कन्याओं का आदर करना, ये करना चाहिए। आजकल लड़का लड़की में भेद पैदा कर दिया है, लड़का हो तो राजी, कन्या हो जाए तो बिजार नाराज। कारण क्या है कि आज कन्या की शादी में खर्च ज्यादा होता है, तो खर्चा अधिक होने से ये पैसे का मोह है। कन्या और जो पुत्र है उसका आदर नहीं है, पैसे का आदर है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम, जैसे ये है टका नासी हा टका टक टका ऐसे, बस टका आना चाहिए। टको नाम ले वैसे तो शत्रु से मित्र हो, और टके बिना मित्र से तो शत्रु कहलाते, ऐसी बात है। तो पैसे की मुख्यता होती है। बाद में स्कंद गए तीसरे अध्याय में है, वहां पर कहा था कलयुग में पैसे की प्रधानता होगी, द्रव्य की प्रधानता होगी, उनके लिए पाप अन्याय सब कुछ कर लेंगे, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ऐसा काम कर लेंगे, जो व्यापार में महान दोष है, नरकों में ले जाने वाली चीजें है वे कर लेंगे पैसे के लोभ से। वो पैसा खर्च होने के कारण से कन्या का आज निरादर करते हैं, तो बहुत पाप की बात है ये। और कन्या का गर्भ गिरा देते हैं, वो मातृशक्ति है, कन्या छोटी भी है मातृशक्ति। मेरे तो व्याख्यान में ऐसा काम पड़ा है, तो कोई एक साधु एक जगह की बात है, जब ये साधु होते हैं ये स्त्री की निंदा करते हैं, उनके भाव था, तो मैंने कहा छोटी कन्या है उसको भी तुम मातृशक्ति समझो, ये शक्ति तो माँ की शक्ति है ना, अंत में इनसे पैदा होंगे पुत्र, तो मातृशक्ति है, छोटी हो चाहे बड़ी हो वो मातृशक्ति है। संतान जो पैदा हो न हो, पहले मर जाए अथवा बांझ भी हो जाए हो सकता है, परंतु है तो मातृशक्ति। तो ये भाई बहन जितने बैठे हैं हम सब माताओं से ही पैदा हुए हैं, मातृशक्ति से बहनों हुई तो भाई हुए तो सब हमारी माँ से ही पैदा हुए हैं, तो मातृशक्ति की बड़ी महिमा है। वो मातृशक्ति है, कन्या का गर्भ गिरा देते हैं, बड़ी भारी हत्या करते हैं, भ्रूण हत्या बड़ी पाप बताया है संसार में, हत्याओं में ब्रह्म हत्या सबसे ज्यादा पाप बताया। तो यद पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुणं गर्भपात रहे, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है उससे दूना पाप लगता है गर्भ गिराने का, तो गर्भ गिरा देते हैं बहुत बड़ी भारी पाप की बात है। ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप होते प्रायश्चित पाराशर स्मृति में ये लिखा है कि उसका प्रायश्चित नहीं है, और परित्याग हो दिए थे, पति को चाहिए कि गर्भगृह में स्त्री का परित्याग कर दे सदा के लिए, कभी स्त्री न माने उसको, ऐसी बात आई है। और परिस्थिति नहीं, बड़ा भारी पाप है। आज इसकी बात में आज तो गर्भगृह संसार का कानून बन गया सरकार का, हिंदुओं के लिए खास गर्भगृह हो, किसी तरह से संतान पैदा न हो, ऐसा करो। बड़ी भारी हत्या है, संतान का निरोध करना भी बड़ी भारी हत्या है। मनुष्यों ने पुत्र के लिए बड़ी बड़ी तपस्या की है। महाराज दिलीप के पुत्र नहीं हुआ था तो उसने 21 दिन तक केवल अकेले राजा और रानी सुदक्षिणा महारानी और महाराज दिलीप वशिष्ठ जी के यहाँ जाकर उसकी नंदनी नाम गऊ थी उनकी सेवा करी है। सप्तभ्य 21 दिन हो गए तब नंदनी वो कामधेनु की बच्ची थी तो उसने फिर विचार किया, परीक्षा करी है तो परीक्षा करी तो वो घास चरते करते नदी गंगा जी किनारा पास में पहाड़ है, पहाड़ की एक गुफा है, वो चरती चरती गुफा में चली गई तो गुफा में से सिंह निकला एक, तो वो गोरी गाय थी। अब लोगों में प्रसिद्ध है पहले आप लेकिन गोरी गाय गया हूँ तो गोरी गाय का आदर याद है, छोरा मेरे हाँ तो बचपन की बात याद है। तो ऐसे लोग कहते हैं पहले आप लेकर गोरी गाय गया, गोरी गाय ब्याई मारे छोरे बड़े राजी होते हैं, खुश होते हैं, कूदने लग जाते हैं। तो वो गौरी थी नंदनी, उस पर सिंह आया, वो सफेद सिंह वर्ण था, वहाँ लोधरम ध्रुम अवस्था से जैसे लोधरम लाल लाल हो उसके ऊपर जैसे सफेद हंसा जैसे वो आकर आया सिंह। तो वो क्या हुआ कि वो राजा दिलीप उस गऊ को तरह से आसन बंद हीर जला विलासी जल मादा नाम छाई बताम भूपति अन्वगत छाया की तरह चलता, जैसे छाया बैठे तो बैठ जाए, उठो तो उठ जाए, टेढ़े हो तो टेढ़ी हो जाए, जैसे चलो जैसे छाया वैसे करो, वो छाया वैसे ही हो जाती है। तो नंदनी गऊ के पालन करने में छाया की तरह साथ मेरे धनुष बाण लिए हुए साथ में सेवा करते थे दिलीप। किस वास्ते कि इसके पुत्र नहीं था, संतान नहीं था, वो संतान हो जाए। वशिष्ठ जी से पूछा, गुरु जी से महाराज क्या करूं, कि भाई ये नंदनी है, इस गऊ को सेवा करो, ये कृपा कर वरदान दे, तुम्हारे संतान हो जाएगा। इस संतान के लिए सेवा करता था। तो वो गुफा में से एक निकला सिंह, सिंह निकला, उसने आक्रमण कर दिया। तो क्यों कर दिया कि वो देखने लगा पहाड़ की शोभा, नदी की, जंगल की, वृक्षों की शोभा, इधर देखने लगा यू गौ तरफ से दृष्टि हटी और उसी समय गोपाल सिंह ने आक्रमण कर दिया। तो वो घबराई गौ बोली, तो देखते ही बस धनुष बाण था, धनुष लेकर चट चढ़ाया बाणी हूँ, बाण चढ़ाया तो मैं चित्रार पितारंभ हुआ बतस्थे महाराज वे चित्रार चित्र में लग जाए वो जैसे मूर्ति लगे हो गया। अब बाण चलता ही नहीं, बाण उस पर चलता ही नहीं। तो राजा बड़ा बड़े भोगी व मंत्रों से विरुद्ध भी दिया, जैसे काला सांप हो और वो भी महाराज मंत्रों के बसी हो जाता है तो वह काट नहीं सकता, इस तरह से राजा भीतर ही भीतर में बड़ा दुख पा रहा है। मेरे सामने गऊ नष्ट हो रही, गऊ को सिंह खा रहा है। उस समय में सिंह बोलता है, हंसता है, विश्वास विश्व मातुम सिंह बोल सत्यु निजगा सिंह है। उस दिलीप के सामने बोला, तू क्या करता है, तू समझता है कि मेरा हाथ अटक गया, मैं बाण चला नहीं सकता, तुम बाण चला करके मेरे को नहीं मार सकता, जरूर आज की ताकत नहीं है मेरे पर को शस्त्र प्रहार कर सके, तू क्या चीज है, तू जानता है मैं कौन हूँ, कैसा हूँ मैं, तू समझता नहीं, मनुष्य बड़ी मनुष्य वाचा मनुष्य के तुम मनुष्य के तुम मनुष्य वाचा हुआ जगा बोला है। अमुम पुरा पश्चिश देवदारुम पुत्री कृतोसु वृषवद्वदेन यो हेमकुम वस्त्र विस्मृतानां स्कंदस्य मातु पयसाम रसज्ञा। ये देवदार है गुरु मायाधारी देवदारु का वृक्ष, ये देवदारु का वृक्ष है, क्या है तुम जानता है मैं कौन हूँ? देख परिचय बताऊ मैं तेरे को, मैं भगवान शंकर का कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्र, निकुंभ का मित्र हूँ, कुंभोदर मेरा नाम है। भगवान शंकर पर, शंकर नंदी पर चढ़ते हैं तो मेरे पर चरण रख करके चढ़ते, ये भगवान शंकर के चरण स्पर्श से मेरा दिव्य शरीर हो गया है, जमराज भी मेरे को नहीं मार सकते, चूसे हाथ अटक गए क्या करेगा, हाथ अटक गए चला दे, देख मेरे पर सिंह चला दे, मेरे पर कोई नहीं प्रहार कर सकता, मैं ऐसा हूँ। तो एक दिन शंकर भगवान आ गए, आ गए शिशु देवधर को देखा तो माता पार्वती ने अपना दूध सिंचन किया इसको, जैसे स्कंद से मातु पैसा रसज्ञा, जैसे स्कंद और गणेश वो माता पार्वती के दूध पीते हैं, ऐसे इस देवदारू ने माता पार्वती का दूध पिया है। भगवान शंकर ने इसको पुत्र से माना है, तो एक बनेरे हाथों कोई शंकर में आ गया, उसने खुजाल की, उसने त्वचा उतर गई, ऊपर की छाल उतर गई, तो जैसे कोई अपना स्कंद पुत्र है और कोई उसकी चमड़ी उतार दे दुख हुआ, ऐसा माँ को दुख हुआ। तो उस दिन कहा कि मेरे क्या तू यहीं रहे, कहीं मत जाना, कोई हाथी पास नजदीक नहीं आवे, इसको किसी तरह से कोई जगत न पहुंचावे, इस तरह से मैं वहां पर नियुक्त हुआ हूँ, तो अब जा नहीं सकता, तो मेरे तो उपवास ही हुआ है, आज ये गाय आ गई तो आज देखा आज पारणा करूंगा, आज बस पारणा होगा मेरा, बस इतना दिनों को हुआ ऐसे उपस्थिता सोण तो पारणा में याद मिल गया है, अब खाऊंगा इसको मैं तो। उसने कहा कि भाई मैं नहीं खाने दूंगा, तो क्या करेगा, एक क्या क्या तेरे प्रार्थना करता हूँ। फिर बहुत संवाद हुआ आपस में सिंह का और राजा दिलीप का, संवाद होते हुए कहा तू मेरे को ले ले और गाय को छोड़ दे। तो हंसता हुआ सिंह बोलता है कैसा तू मूर्ख है, एक हाथ पत्रम जगत प्रभुत्म नवम वया कांत विदम अपुष अल्पस्य हेतु बहु हाथ मिथुन विचार मूढ़ा प्रतिभाषी में तुम महान मूर्ख लंस दिखता है, तू एक गऊ के लिए प्राण देता है, जीता रहे तो हजारों लाखों गायों की प्रजा की सेवा कर दिया, मर जाएगा तो एक एक गाय बच जाएगी, इस थोड़े के लिए इतना बड़ा भाई कर दू, विचार मूढ़ है, एक हाथ पत्रम जगत प्रभुत्म नवम वया कांत अल्प से हेतु और बहु हाथ में कहा। कहते ये तो हो गई, वो कहता क्षत्र राज्य प्राणी वक्रोशवा, हम लोग क्षत्रिय कहते हैं, क्षत्रिय हमारा जाति हमारी क्षत्रिय है, क्षत्रिय का अर्थ क्या है, क्षत्र नाम दुख उसे त्राय से रक्षा करे बोला क्षत्रिय है। तो मेरे सामने गाउद गौद उपाय नहीं करो, मेरा क्षत्रिय नाम ही नहीं रहा, मैं क्षत्रिय नाम चाहता हूँ तू मेरे को ले। और फिर के संबंध महाभाष पूर्व माहौ संगति और बनाते मित्र होते हैं, उनकी आपस में बातचीत होने से मित्रता हो जाती है। आज एकांत जंगल में तेरे मेरे इतना संवाद बात हुई, तू तो मेरा मित्र है, दिलीप ने कहा मित्र है, और मित्र की बात को टालना मित्र का काम नहीं है, तू मेरी बात को टाल मत, तू मेरे को ले ले गाय को छोड़ दे, क्योंकि तेरे कई दिनों तू भूखा है, तेरे पालना करना है तो मेरे को खा ले, तेरा पालना भी हो जाएगा, मेरे क्षत्रिय धर्म की रक्षा भी हो जाएगी, गौ भी स्वस्थ मसी होगी तरह से। तो अंत में इस बात से वो दब गया, मित्रता के नाते मेरी बात मेरी माननी पड़ेगी, मैं मित्रता के नाते कहता हूँ, दबाया धनुष ने कहते अच्छी बात, हाथ खुल गए, वो धनुष मान से बढ़ करके कपड़ा रख करके एक धोती सी पहन ले, वो जाकर के सामने अपने आप को पटक दिया ले, खा ले मेरे को। अब वो जो ही सामने पड़ा थे ऊपर से आकाश में फूलों की वर्षा हुई तो धन्य है भाई। सेवा ऐसी होती है, सेवा करता किस लिए है, पुत्र के लिए। भाइयों बहनों जो ध्यान देकर सुनना, पुत्र के लिए सेवा कर रहा है और आप मर जाता सिंह खा ले पुत्र किसके होगा, खुद ही खत्म हो गया। बस सेवा करनी तो ऐसे भाव से करनी चाहिए, सकाम भाव से सेवा ऐसी हो तो वो पुष्पों की वर्षा हुई, देवता खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और ऊपर को देखा तो गाय सिंह है ही नहीं, वहां सिंह वहां कुछ नहीं है। तो उसने नंदिनी ने कहा, नंदिनी गाय नंदिनी नाम था उसके, माया बड़ी, मैंने अपनी माया प्रकट करके तेरी परीक्षा ली है तो तेने बहुत ठीक किया है। अब पीतास में थे वरम ऋणिस, पीतास में थे पुत्र वरम ऋणिस, बेटा मैं खुश हो गई हूँ, अब वरदान मांग तू क्या चाहता। तो के माँ मैं पुत्र चाहता हूँ, बल शिष्य करता रमानंद की तुम सुदक्षिणायाम तनिया ही है जाते, मेरी महारानी सुदक्षिणा के मेरे से पुत्र हो, वो वंश से करता और वंश को करने वाला ऐसा मेरा बेटा हो जाए, मैं बेटा चाहते हूँ। तो कैसे बेटा हो जाएगा, ले मेरा दूध पी ले फिर बेटा हो जाएगा, दूध पीएगा कैसे दी पी ले दूध मेरा तो तेरे बेटा हो जाएगा। तुम कहो माँ मैं कैसे अन्याय कर सकता हूँ, आप वशिष्ठ वशिष्ठ गऊ हो, अब मैं जंगल में दूध पी लू तो चोरी होती है, मैं आया हूँ रक्षा करने वास्ते, चोरी करने वास्ते नहीं आया हूँ, मैं नहीं पी सकता, बछड़ा पी ले वशिष्ठ जो होम से भी सामग्री सब हो जाए वो सब रह जाए बाकी बच जाए और वशिष्ठ जी आज्ञा दे वो मैं रहूंगा। सत्संग बुरी रक्षित आया, हम पृथ्वी की रक्षा करते हैं और उन्हें पैदा होता अनाज उसमें छठा हिस्सा हम लेते हैं, पांच हिस्सा तो मालिक का होता है, छठा हिस्सा हमारा कर होता है वो हम हासिल लेते हैं। ऐसे ही दूध का भी छठा गहू रूपी पृथ्वी की रक्षा कर दी, सत्संग बुरी रक्षित आया उसका हम दूध की रक्षा से मैं माँ दूध नहीं पी सकता। तो माँ और खुश हुई, दंदनी और खुश हुई कि कितना त्याग है, कितना हम धर्म पर स्थित है। इसके बाद देखा तो वशिष्ठ जी आश्रम में पाया, वहां गई फिर वही जन्माए, वो पुत्र जन्माए रघु, तो रघु वंश कहलाता है, एक दिलीप वंश नहीं है, रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, दशरथ जी के राम हुए, तो राम वंश नहीं है, दशरथ वंश नहीं है, अज वंश नहीं है, रघु वंश है, क्यों रघु से एक वंश चला, इस वास्ते वंश से करता आनंद की से वंश को करने वाला ऐसा मेरा बेटा हो, वो फिर रघु हुआ है।